Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra.
Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taaza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक एके भट्टाचार्य. एके भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
Let's quickly run you through the headlines first. Prime Minister Narendra Modi urges India's steel industry to aim for zero imports and net exports. Also, inaugurates and lays foundation stone for several infrastructure projects worth over 13,480 crore rupees in Bihar. Benchmark domestic equity indices end 7-day winning rally. Sensex falls over 300 points. Nifty closes below 24,250. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $66.83 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय इस्पात निर्माताओं से शून्य आयात और कुल निर्यात के लक्ष्य रखने का आह्वान किया. साथ ही बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न बुनियादी ढांचा वाली योजनाओं का ऐलान करते हुए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया. घरेलू शेयर बाजार में पिछले सात सत्रों से जारी तेजी थमी. सेंसेक्स 300 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 24,250 के स्तर से नीचे फिसला. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी. ब्रेंट क्रूड के दाम $66.83 प्रति बैरल पर पहुंचे.
Well, it's now time we take a deeper look at the first story this evening. Prime Minister Narendra Modi today stated that India's steel industry is brimming with renewed confidence about its future. Speaking virtually at the inauguration of the India Steel 6th International Exhibition and Conference being held in Mumbai, Mr. Modi highlighted the ambitious goals set under the National Steel Policy, which aims to increase the country's steel production to 300 million tons by 2030. Prime Minister further noted that per capita steel consumption is projected to rise from 98 kg to 160 kg by 2030, driven by the transformative PM Gati Shakti National Master Plan. He stressed the need for a goal of zero imports and a focus on net exports. The Prime Minister said that India is currently working towards a target of exporting 25 million tons of steel and aims to increase production capacity to 500 million tons by 2047. He also emphasized collaborating in manufacturing, R&D and technology upgrades to create more job opportunities for the country's youth.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और अनेक योजनाओं की आधारशिला रखी. इन परियोजनाओं में गोपालगंज का एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और गोपालगंज के हथुआ में रेलवे के लिए आधारभूत ढांचा तथा राज्य में विभिन्न स्थानों पर बिजलीकरण परियोजना, आवास योजना, सड़क विकास आदि सम्मिलित हैं. श्री मोदी अपने बिहार दौरे में 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और चार रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई. कुल मिलाकर भारतीय इस्पात क्षेत्र पर एकेबी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने जो ये आह्वान किया है जीरो इम्पोर्ट और नेट एक्सपोर्ट का, वह कितना कह लें कि आगे ले जाने वाला होगा इस्पात क्षेत्र को.
देखिए, ये एस्पिरेशनल एक टारगेट है. अगर आप नेट एक्सपोर्ट्स करेंगे और जीरो इम्पोर्ट्स करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप पूरी तरह से एक्सपोर्ट में पूरी तरह से एक जो एम्फेसिस देंगे और इम्पोर्ट जो है उसमें आप नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़रूरतें नहीं होंगी, पर आपकी ज़रूरतें का जो जो पूरी करेंगे देश के अंदर ही जो प्रोडक्शन होगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है, दोनों को ही हमें आगे बढ़ाना होगा। और जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टील कंजम्पशन का जो टारगेट है उसको बढ़ाने के लिए जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उसकी भी ज़रूरत होगी। पर ये साफ जाहिर है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड अगर ग्रोथ मॉडल हम इसको फॉलो करें तो स्टील की जो अहमियत है वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो किस तरह से अगर हम ज़ीरो इम्पोर्ट करें उसके पहले हमें डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को भी ऊपर काफ़ी जोर देना पड़ेगा।
And apart from that, so these days the discussion is about how India is also a major fastest growing economy and you know it is quite ahead of some developed economies as well. So with this target, even though it may be aspirational, I'm sure that is going to impact the real estate and infrastructure sector in a big way. So how are those sectors likely to contribute to India retaining its position or maybe, you know, even taking it further as a global economy?
Well, you know, steel is a very important input in any economy, but let us also admit that the steel is probably losing its central position and importance in the economic growth model of the future, in the sense that yes, steel is critical for infrastructure building, but there are also many metals, particularly which are based out of critical minerals, which are becoming increasingly more important. But the important point that the Prime Minister underlined is that the current per capita use of steel in our country is relatively low. At 98 kg per person, it is nowhere near where it ought to be. So if you want to raise it to the target of 160 kilogram per person by 2030, and we have only just about 5 years left, so this kind of almost near doubling, you know, 98 kg per person to 160 per kg per person is a huge challenge, huge task. So which is why I was telling Manojji that while the aspirational target of net exports and zero imports is a good target to have, but these goals can be achieved only if a lot of emphasis and focus is driven towards creating fresh capacity in steel making. And steel making capacity, the target can be raised and should be raised, but please also remember, while creating the steel capacity, we will have to keep in mind our climate change goals, because when you create new capacity in steel making, you are also probably adding burden to our climate mitigation target challenges. So therefore, it has to be a calibrated approach. Yes, we need to increase our per capita consumption of steel, because at that stage of our economic development. But at the same time, we have to make sure that we export a lot more and we create enough domestic capacity to minimize the need for imports. And that domestic manufacturing capacity has to be more competitive, keeping in mind, of course, our climate mitigation commitments.
Of course, you know, that sounds easier said than done in a lot of ways, but I'm sure, you know, so our cities are growing by leaps and bounds and there is so much pressure on urban areas as compared to rural areas. So do you think there is an opportunity there to bring up rural areas and add to this goal in a positive way?
Absolutely. I think India is still largely a rural economy. The use of steel is very, very minimal. But as I said, that new substitutes are coming in a big way. So it is not always correct to measure one's economic development by the yardstick of usage of steel, because that is a metal that was probably more critical in the early stages of Industrial Revolution. But given our stage of economic development, we need to raise the per capita consumption of steel from the current 98 kilogram per person to 160 kilogram per person by creating more capacity. But as I said, that these capacity creation will have to be more sustainable, keeping in mind that the climate mitigation targets that we ourselves have set.
देखिए भी आपने चर्चा को बड़े रोचक मोड़ पे पहुंचा दिया है. यदि मैं ठीक से समझना चाहूं तो दो तीन बिंदु जो आपने उठाए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है. एक तो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और उस पर हमारी जो दायित्व है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, और दूसरा कि स्टील ही वह कारक, वह फैक्टर अब नहीं रहा जो विकास का पैमाना या कह लें कि उभरती हुई जो दुनिया बन रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बनकर रह गया. इसे थोड़ा और हम विस्तार में समझना चाहेंगे और विभिन्न धातु जो आने वाले दिनों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे वह क्या है और किस रूप में ये निभा रहे हैं.
आपने एक सही सवाल किया है, क्योंकि जो 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 हमारी जो विश्व की जो प्रगति जो आ रही है अगले दशकों में, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो जिससे कि आप मेटल्स का जो नए मेटल धातुओं की जो उत्पत्ति होती है उसका, जैसे आप कहेंगे कि लिथियम, कोबाल्ट
जी,
ये सब चीज़ों का जो इस्तेमाल जो टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस या टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में जो इनके काम आएंगी, अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन अगर लाएंगे उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ऐसी बैटरी का उत्पादन हमारे देश में ही कर सकें जिससे कि हमें आयात के ऊपर निर्भरशील ना हुए. और उस आयात के निर्भरशीलता को घटाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा हम किस तरह से लिथियम या कोबाल्ट, जिससे कि डोमेस्टिक देश में भी उनका जो हमारे पास जो खान जो है उनको डेवलप करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें वैसे देशों के साथ जैसे चिली है, चिली में विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम और कोबाल्ट की जो उनकी रिजर्व्स हैं, हम भारत सरकार ने चिली के साथ एक पैक्ट का एक ऐलान भी किया है पिछले दिनों में, जिससे कि ये हो गया कि हमारा जो वो जो धातुओं को हम उसको हमारी देश की जो टेक्नोलॉजिकल प्रगति में वो काम आएगी. तो स्टील जो है, इस्पात बहुत ज़रूरी है, पर इस्पात के साथ साथ हमें जिस तरह से हमारी देश की आर्थिक प्रगति बढ़ रही है, हमें और भी धातुओं का प्रयोग किस तरह से हम बढ़ा सकें उसमें भी हमें काफी ध्यान देना होगा.
एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्टोरी दिस इवनिंग. द गवर्नमेंट हैज टेकन अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी मेजर्स एम्ड एट प्रमोटिंग अंडरग्राउंड कोल माइनिंग. The Union Coal Ministry stated that the decision addresses the traditional challenges of high capital investment and longer gestation periods and reaffirms the government's resolve to modernize the coal ecosystem while aligning with the broader vision of sustainable development. The initiatives include a reduction in the floor revenue share from 4 to 2% and a complete waiver of the mandatory upfront payment required for underground mining ventures. These measures primarily focus on promoting sustainable development, unlocking untapped potential and contributing to energy security and self-reliant industrial growth. Well, we were talking about how, you know, we need to balance every aspect of sustainable development, and there we have the story, right?
That's right.
On coal initiatives.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें शेयर बाजार की ओर. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 7 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया और बिकवाली के दबाव में प्रमुख सूचकांक 0.3% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए. रियल्टी एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली अधिक रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी मिला जुला संकेत आया जिसका निवेशकों पर असर देखने को मिला. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 315 अंक यानी लगभग 0.4% घटकर 79,801 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 82 अंक यानी 0.34% नुकसान के साथ 24,247 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां प्रदर्शन अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की गिरावट हुई जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा।
Let's take a look at the detailed stocks in English now. The benchmark domestic equity indices ended over 0.3% down, snapping their 7-day winning streak in today's range-bound trading session amid weakness in realty and FMCG sectors and mixed global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, lost 315 points, almost 0.4% to close at 79,801. The National Stock Exchange, Nifty 50, slipped 82 points, or 0.34% to settle at 24,247. The broader market indices at the BSE ended marginally low. The mid-cap index declined over 0.1% and the small-cap index ended flat. In the Sensex index, 17 out of 30 companies registered a downward trend. In the top laggards, Hindustan Unilever slid 4%, Bharti Airtel slipped over 1.9% and ICICI Bank dropped over 1.5%. Among the top gainers, IndusInd Bank gained over 3.2%, Ultratech Cement rose over 1.7% and Tata Motors advanced more than 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors logged losses. In the top laggards, realty fell almost 1.4%, FMCG dropped over 0.8% and tech lost almost 0.6%. Among the top gainers, commodities increased more than 0.6%, healthcare rose over 0.5% and metal advanced over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,015 companies declined, 1,920 advanced and shares of 151 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 42 companies hit their 52-week high, while 13 companies hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ, 85.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.33 पर कारोबार कर रहा था। एकेपी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। लगातार 7 सत्रों से हमने तेजी देखी और आज थोड़ी सी नरमी रही, किन अर्थों में ले रहे कारोबार को आज के?
देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आज जो एक्सपायरी था,
जी
वीकली एक्सपायरी था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट बुकिंग 7 दिन के चढ़ने के बाद स्वाभाविक है। तीसरी बात कि एफआईआई जो हैं पिछले 7 दिनों में उन्होंने काफ़ी खरीदी मार्केट में। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बहुत 7 दिनों की जो में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो रोल था वो कम हुआ था, एफआई ने काफ़ी किया। और जो अंतिम बात मैं जो कहूँगा वो जो Q4 जो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं वो Q4 रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रही है, पर्टिकुलरली FMCG कंपनीज में। उसमें डिमांड में थोड़ी बहुत नरमी आ रही है, उससे भी मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। और एक जो मैं कहूँगा कि जो कल जो US और चाइना की एक रेजोल्यूशन टैरिफ, जो उनका वॉर चल रहा है उसमें एक रेजोल्यूशन होने की बात हो रही थी, उसमें शायद मार्केट को ये असेसमेंट हो रहा है कि वो शायद ज़्यादा देर नहीं चलेगी और जो रेजोल्यूशन होने की बात उम्मीद की गई थी वो शायद उम्मीद ही रहे, उसमें कोई रियलिटी नहीं है उसमें। तो इसीलिए भी मार्केट थोड़ा ढीला नीचे की ओर गया है, पर मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा अगले जो जुलाई तक, जहाँ पे सारा जो विश्व का मार्केट और भारत का मार्केट इंटरनेशनल जो ट्रेड वॉर जो चल रहा है इस वक्त, US ने जो चलाया है वो ट्रेड टैरिफ वार के से काफ़ी संपर्कित रहेगा और ये हमें देखना होगा कि किस तरह से कौन सी दिशा में ये मार्केट अब जाती है.
Well, you know, I would like to go back to a point that we discussed earlier this evening about premium electric vehicles and EVs in general. So there is a new trend of younger investors or younger generation investing in premium electric vehicles, not the normal EVs also. First of all, why do you think that is? Why do you think the premium EV segment is picking up? And also apart from that, when it comes to young investors, do you sense a trend of consumerism when they, you know, place or plan their investments and finances in general?
Well, I think if you're talking about the premium EV, you're referring to the electrical vehicles, am I right?
Yes.
Now, the electric vehicles is a product of the future. There is a huge demand for electrical vehicles, particularly in this country. And many of those new age electrical vehicles which are coming, they are coming riding on what is called BAS, which is the battery as service. Now, which is, means that the price of the electrical vehicle, even though they are of a premium range, the price is much lower than a medium range electrical vehicle. Now, the entry point of the premium electrical vehicle based on BAS, which is battery as service, which means that you don't buy the battery, you actually take the battery and get it recharged on a monthly rental basis, which means so your actual downtime cost, which is when you are buying that vehicle, is probably less than a medium range vehicle under the ICE format. So electrical vehicle today has become the star item. Not only in the stock market, but also in the consumer goods segment, where younger people who want to get into this segment, which is also a little bit of not causing pollution in the environment. So I think this trend will continue. And if you have seen the manner in which the electric vehicle market has gone in for a huge churn, where the traditional players in auto sector are losing their market share to the new auto companies which are getting into the electrical vehicles. So I think this is a trend that will continue, and you will see electrical vehicles doing better not only in the actual marketplace but also in the stock markets.
AKB, यदि हम वर्ष 2025 को देखें तो काफी उतार चढ़ाव और आशंकाओं वाला समय दिख रहा है, वैश्विक स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर भी. ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिख रहे हैं जिन सेक्टर की लंबी अवधि के लिए, यानी कह लें कि पूरे 2025 और एक दो साल हम और आगे लेके चलें, तो उनमें निवेश का फैसला, जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनको घाटे का कह लें कि आशंका कम रखेगा? बेशक अंतर्राष्ट्रीय जगत में उतार चढ़ाव आए, संबंध शुल्क को लेकर जिस दिशा में जाएं, लेकिन कुल मिलाकर कौन सा ऐसा स्थिर सेक्टर दिख रहा जहां पर कुल मिलाकर घाटा नहीं होगा?
दो सेक्टर्स हम साफ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वक्त. हालांकि जो विश्व की जो व्यापक स्थिति जो है वो काफ़ी अनिश्चितता में जुड़ी हुई है. एक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर
जी.
उसका जो डिमांड अभी भी और जो भी वातावरण हो उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर का डिमांड बढ़ता रहेगा. तो वो ऐसा एक सेक्टर है, और क्योंकि इंडिया में ऐसी सारी कंपनियां हैं जो कंपनियां काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो फार्मा प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो पहला सेक्टर. और दूसरा सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ, जो मेटल सेक्टर जो है, उसकी डिमांड, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर जो लेटेस्ट जो एस्टिमेट जो आ रहे हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं घटेगा, वो कह रहे हैं कि 3 बेसिस पॉइंट्स घटेगा, पर उसके बाद भी सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम है वो बरकरार है. और उसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और द मेटल सेक्टर में काफ़ी उसकी डिमांड रहेगी, और उसकी जो स्टॉक मार्केट में जो परफॉर्मेंस है मैं समझता हूँ कि वो
बेहतर
रहेगी.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है. अमरीका द्वारा पहले इस सप्ताह ये संकेत दिए जाने पर कि चीन के साथ शुल्क विवाद को लेकर तनाव घट सकता है, वहीं चीन की ओर से ये टिप्पणी आई है कि फिलहाल अमरीका के साथ शुल्क के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, आसार भी कम दिख रहे। बाजार में इन सब खबरों का असर आज दिखा है। बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंगसिंग सूचकांक आज 0.7% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.13% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुआ। उधर निवेशकों की खरीदारी से जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.5% की तेजी आई। इस बीच चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली घाटे के साथ अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बना रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो प्रमुख बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक नरमी दिख रही थी। अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक 40 दोनों 0.3% नुकसान के साथ चल रहे थे। लंदन की फुटसी 100 में भी 0.1% की गिरावट थी।
And as for the US markets, all three major US indices advanced on Wednesday amid revived hopes for progress in the US-China trade dispute. The indices saw strong gains across the board, with the Nasdaq composite leading the way, up by 2.5%, the S&P 500 gained over 1.6%, and Dow Jones Industrial Average rose over 1%. And before I actually ask you my next question, I'd also just quickly like to take in the next story. The World Bank has said that the Indian economy will grow at 6.3% in financial year 2026, 0.4 percentage points lower compared with October forecast, citing increased uncertainty in the global economy that will dim prospects for most South Asian nations. According to World Bank, in India, growth is expected to ease as the benefits to private investment from monetary easing and regulatory streamlining are expected to be offset by global economic weaknesses and policy uncertainty. The World Bank also made a mention of the rapid rise in India's equity markets in recent years, in terms of both listings and valuations, that has attracted significant net inflows. Noting that India's number of initial public offerings, or IPOs, was second only to the US in the value of new listings in 2024, the bank said the equity correction could dampen consumption. You know, in relation to this, so there are some statistics that have been also released by the IMF, which say that the Indian economy will grow at 6.2%, roughly around the same numbers. But that is still better as compared to some developed economies, which are set to grow at either 4% or 2%, around those numbers. So what are some macroeconomic factors that India has to its advantage? And, you know, it still remains one of the fastest growing economies.
Well, I think you have a huge market. We have a huge market, and we are less dependent on trade, as the trade to GDP share has been coming down. So as a result, whatever is happening globally on the trade front will probably have a relatively less impact on India's overall growth prospects, which is why India is forecast to see the smallest drop in its overall growth numbers, from 6.5% to 6.3%. So I think that is the reason why India will continue to grow above 6%. But remember, India needs to grow much faster.
Absolutely. And let's also quickly take a look at crude oil. Oil prices rose today, recovering from losses suffered earlier in the session, as investors weighed a potential OPEC plus output increase against conflicting tariff signals. WTI crude was trading over 1.2%, up at $63.06 per barrel when reports last came in.
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
नमस्कार।
And with that, it's a wrap on today's Market Mantra. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi urges India's steel industry to aim for zero imports and net exports, also inaugurates and lays foundation stone for several infrastructure projects worth over 13,480 crore rupees in Bihar. Benchmark domestic equity indices end 7-day winning rally, Sensex falls over 300 points. Nifty closes below 24,250. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $66.83 per barrel. And with that, it's a wrap on this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.